ओम शांति। बहुत अच्छी सेवाओं को ध्यान में रखते हुए एक सफल सरल ट्रेनिंग यहाँ पर प्राप्त की। हम उसके बारे में रोज सुनते रहते थे बहुत कुछ, और टॉपिक्स का पता होता था, इच्छा भी होती थी कि आ जाएं, परंतु हमारे काम जरा बढ़ते जा रहे हैं आजकल, इसलिए सोचा कि जब लिखा जाएगा कुछ तो उसको पढ़ेंगे और कुछ नई चीजें सीखने को अवश्य मिलेंगी। मुझे ऐसे तो आज कहा है तनाव रहित जीवन, ब्राह्मणों के लिए तो तनाव बहुत कम हो गया है। कुछ लोग हंसते हैं ये बात सुन के, सोचते हैं बढ़ गया है, तो परंतु हो तो कम गया है। कुछ जब डॉक्टर्स, बाहर वाले डॉक्टर जब वहां अपने भाई बहने जाते हैं पेशेंट बनकर, तो वो एक बात कहते हैं कि कुछ डिप्रेशन दिखाई देता है, उदासी, और हम सब बड़े नशे से गौरव से कह देते हैं कि डिप्रेशन तुम्हें हो सकता है, हमें नहीं। परंतु फिर भी अब अपने डॉक्टर हैं यहाँ, कभी हम उनसे चर्चाएं करते हैं तो कहते हैं कि अपने भाई बहनों में डिप्रेशन बढ़ता जा रहा है, क्या कारण हो सकते हैं? कुछ समस्याएं भी डिप्रेशन बढ़ा सकती हैं, परंतु मुझे इसका एक रॉयल कारण समझ में आया। मैंने उन लोगों से चर्चाएं की कि एक रॉयल कारण डिप्रेशन का, उदासी का जीवन में, जो बहुत सूक्ष्म रूप से कई आत्माओं के अंदर घर कर गई है और चेहरे से दिखाई देने लगती है, और मेडिकली उसका थोड़ा थोड़ा इफेक्ट शरीर पे पड़ने लगता है, वो ये कि लक्ष्य बहुत ऊंचा और पुरुषार्थ और लक्ष्य को पाने की स्पीड कछुए जैसी, तो सोचते हैं कि मंजिल पर पहुंच नहीं पाएंगे। डिप्रेशन का एक बहुत सूक्ष्म कारण, मंजिल बहुत ऊंची है इसमें कोई संदेह नहीं, संपूर्ण बनना, बाप समान बनना छोटी सी बात तो नहीं है। बाप समान को दूसरे शब्दों में कहते भगवान बन जाना, जो आप लोग यह पढ़ते होंगे इन सब में सुनाते हैं भिन्न भिन्न वाद, लोगों ने मान लिया आत्मा ही परमात्मा है या बन जाएगी, जैन फिलोसोफी में ऐसा मानते हैं। तो इतनी बड़ी मंजिल और उसको प्राप्त करने के लिए बहुत ऊंची ऊंची बातें जो बाबा रोज सुनाते हैं, और अपने पुरुषार्थ की गति, ये तीनों जब सामने दिखाई देती हैं अपने को, तो आत्मा के अंदर डिप्रेशन का जन्म होता है। एक बहुत रॉयल कारण, ऐसे ही कुछ सूक्ष्म रॉयल कारण ब्राह्मणों में टेंशन के भी हैं, और तनाव मुक्त जीवन को हम दूसरे सरल शब्द कौन से देंगे, जरा आप भी बताएंगे। तो सरल शब्द बिल्कुल बाबा के ही हैं, है? आसान जीवन, सरल जीवन, और आनंदमय जीवन, और सादा जीवन, जरा दूसरा दो दूसरा फील्ड है, और प्रसन्न चित्त जीवन, संतुष्ट जीवन, एक शब्द और जो हमें इसके अर्थ का पूरा ही बोध करा देता है, निश्चिंत जीवन। निश्चिंत जीवन, बेगमपुर के बादशाह बन जाए हम सभी न केवल जीवन जीकर उसका अनुभव और आनंद प्राप्त कर रहे हैं, परंतु सभी को जीवन के हर फील्ड का अनुभव भी हो रहा है, चाहे वो टेंशन हो, डिप्रेशन हो या संसार का और कोई फील्ड। हमसे लोग कहा करते हैं कि भाई तुम लोग तो कभी गृहस्थ में न रहे हो न देखा है, और मेरे साथ तो ऐसा है कि मैंने तो गृहस्थ का कुछ भी नहीं देखा, बचपन से ही संन्यास जैसा रहा, तो तुम लोग गृहस्थ की बातें कैसे बताते हो लोगों को। तो मैं उन्हें यही कहता हूं कि हमारा जो इतना बड़ा गृहस्थ है ये, आप इसे नहीं देखते, इसमें वो सब बातें अनुभव में आती हैं जो एक व्यक्ति को छोटे परिवार में, चार पांच के परिवार में अनुभव में आती होंगी। तो सरलता, जीवन को सरल कर देना, विचारों को सरल कर देना, और सरलता के साथ सरलता की ब्यूटी, सरलता की सुंदरता इस बात में है कि सरलता के साथ विचारों की महानता हो। अगर केवल सरलता है, विचारों की महानता नहीं है, तो भोलापन है। और उस भोलेपन का पर्सनालिटी पर एक तरफ तो प्रभाव पड़ता है, लेकिन दूसरी तरफ नहीं, अधूरापन रह जाता है। तो बाबा ने हम सभी को विचारों को सरल करने की बहुत बड़ी ट्रेनिंग दी है, निश्चिंत रहने का भी बहुत विशाल ज्ञान दिया है, और कदम कदम पे जहां हमें टेंशन हो जाती है उसके सूक्ष्म कारणों का आभास भी कराया है। दुनिया में जिन लोगों को भी टेंशन है, सब कोई है, किसी को कम किसी को ज्यादा, तो लोग ये सोचने की कोशिश नहीं करते कि उनकी टेंशन का कारण वो स्वयं है। ये बहुत बड़ी गलती होती है संसार में बुद्धिमानों के पास भी, कि वो ये कभी नहीं सोच पाते कि जो कुछ उनके साथ हो रहा है उसके कारण, उसके जिम्मेदार वो स्वयं हैं। तो बाबा ने एक तो हम सबको ये रोशनी दी है। मैं आपको अपने अनुभव भी सुना रहा हूं, जिन चीजों का मैं ध्यान रखता हूं अपने जीवन में और रखा है, तो बहुत पहले से ही विचारों की सरलता के लिए बाबा से बहुत कुछ मिला था, सरल हो जाओ। और उसमें सबसे पहला महावाक्य जिसने मुझे इस फील्ड की ओर ज्यादा प्रेरित किया, बिल्कुल हल्का कर देना है अपने को, कि जो सरल चित्त हैं वो ही सहज योगी बन सकते हैं। और जो सहज योगी हैं, एक बहुत अच्छा महावाक्य बाबा की अव्यक्त मुरली से मिला, जो सहज योगी हैं वही विश्वराज अधिकारी बनते हैं। बहुत सार से भरा हुआ ये महावाक्य है। सरल चित्त हो जाने से, बाबा जिसको डबल लाइट भी कहते हैं, हमारी सारी शक्तियां बच जाती हैं, टेंशन समाप्त हो जाती है, और जीवन के हर फील्ड में, मैंने तो जो भी फील्ड मेरे सामने है उसमें अभ्यास किया कि बिल्कुल सरलता रहे। बहुत बड़े अनुभव मेरे पास शारीरिक बीमारियों के हैं, बीमारियों में पूरा सरल चित्त, जो कुछ हो रहा है, जो नहीं हो रहा है, जो कुछ होना संभव है, उन तीनों में सरल चित्त, निश्चिंत। जो कुछ नहीं हो रहा है वो क्या था कि हमारे यहां यज्ञ में अपने हॉस्पिटल से पहले मेडिकल फैसिलिटीज तो नहीं होती थी, और अगर हमें दांत में दर्द हो गया है तो हमें तब तक के लिए इंतजार करना है जब तक हमारा ग्रुप एक ट्रिप पालनपुर जाए, जो यहां से 2 घंटे के रास्ते पर है, वहां डॉक्टर्स हैं दांतों के, जब तक वहां जाए तब तक के लिए हमें इंतजार करनी है और उस दर्द को सहना है। तो हम सरल रहते थे कि दर्द को हमें सहना ही है, और कोई अल्टरनेटिव हमारे पास नहीं था कि हम क्या करें। यज्ञ की ऐसी तो पोजीशन नहीं होती थी कि हम व्यक्तिगत रूप से पैसा खर्च करें और पालनपुर चले जाएं। सरल चित्त स्थिति ने सहन शक्ति को बहुत बढ़ाया। मैं कभी कभी अपने अनुभव सुनाता हूं, किचन में हम आ गए, और जो बहनें तब से हैं ज्ञान में वो जानती हैं, बहुत छोटा सा किचन होता था बाबा के टावर ऑफ पीस के सामने, जो अब बिस्तर विभाग है, लकड़ी जला करती थी, बरसात में लकड़ी रखने के लिए कोई बंद स्थान नहीं होता था, वो भी बारिश का आनंद लेती थी और पूरी तरह भीग जाती थी। किचन धुएं से भर जाता था, एग्जॉस्ट फैन लगाने के लिए तो कुछ होता नहीं था, और धुआं इतना भरता था उसमें कि बाहर से अगर कोई देखे तो अंदर काम करने वाले दिखाई नहीं देंगे। आजकल की फागी से भी घनी फागी धुएं की वहां रहती थी। हमें याद है जो दादी का छोटा किचन है, जब वहां काम बढ़ गया, 500 लोग आने लगे, तो उसको दूध का रूम बनाया। वो छोटा सा रूम, चारों ओर से बंद, खिड़की भी नहीं, उसमें इतना धुआं भरता था कि उसकी कल्पना अब तो हम कर भी नहीं सकते। तो सरलता का पेपर था। मैंने अपने को एक संकल्प दिया हुआ था जो सरल रखता था मुझे, कि ये धुआं, बाबा में और बाबा की शक्तियों में बहुत विश्वास था कि ये धुआं हमारी आंखों को इतना स्वच्छ कर देगा कि कभी आंखों की तकलीफ नहीं होगी, बिल्कुल विश्वास के साथ। और हम धुएं में काम करते थे बिना ये सोचे कि क्यों नहीं दूसरे लोग हमारी समस्या को समझते। एक मुझे नहीं याद कि मैंने एक दिन भी एक संकल्प उठाया हो कि ये समस्या नहीं है क्या, अगर धुएं से हमारी तबीयत खराब हो गई तो कल हमारा क्या होगा। जो लोग सोचते हैं निगेटिव, जो टेंशन पैदा करता है, वो मुझे जहां तक विश्वास है मैंने एक भी संकल्प नहीं किया होगा। और उसका परिणाम ये हुआ कि आंखें कभी दुखने भी नहीं आई हैं, वो सचमुच साफ हो गई। और गर्मी वहां इतनी होती थी गर्मी के दिनों में कि अगर दीवार को हाथ लग जाए तो वो जल जाए हाथ, दीवार इतनी गर्म। मैं शाम को चाय बनाने आया करता था 3:30 बजे, और तब किचन बहुत गर्म होता था, तपा हुआ, क्योंकि आग वहां पड़ी होती थी गर्मी में। भूल से हाथ लग जाता था दीवार को तो जल जाता था। मैं संकल्प रखा हुआ था कि ये गर्मी हमारे, वैसे तो योग पापों को नष्ट करता है, पर ये गर्मी भी हमारे पापों को नष्ट कर देगी और धर्मराजपुरी की गर्मी हमें नहीं देखनी पड़ेगी। तो इसे बिल्कुल हल्का रहता था मन, और गर्मी को सहने की ताकत आ जाती थी। तो कभी ये नहीं हुआ कि वहां कुछ साधन होना चाहिए हमारे लिए, साधनों की तो तब कोई बात ही नहीं थी, हमारे पास कुछ होता ही नहीं था। हमें याद है जब हम यज्ञ में आए, बाबा जब थे तो केवल एक कुर्सी होती थी, बाबा जिस पे बैठते थे, और ये जो 3 विजिटर्स रूम हैं, इनमें से 2 चालू होते थे, 1 में लिटरेचर भरा था, और उनमें 3-3 लोहे की कुर्सियां पड़ी हुई थी। इसके अलावा यज्ञ में और कोई कुर्सी नहीं थी, बोरियों पे बैठा जाता था भोजन खाने के लिए, टेबल भी थोड़ी पीछे बनी, पत्थर की टेबल होती थी। परंतु वो दिन सचमुच आत्माओं में साधना का तप भरने वाले थे। ये बाबा तो कहता ही है, पर हम देखते आए हैं कि साधन हमारे तप को, तेज को, आत्मिक तेज को बहुत फीका कर देते हैं। ठीक है, साधन साधन है, सुख है उनमें स्थूल, और लोगों को आजकल चाहिए भी, हम भी सोचते हैं कुर्सी के बिना हमसे नीचे बैठा नहीं जाता। लेकिन साधन अलग चीज, और वो साधनों के बिना का तेज जीवन में भरता था वो अलग चीज। तो मन को बहुत सरल रखा जीवन भर, कभी ये भी नहीं सोचते थे कि हम ये सेवा करते हैं, हमारी योग्यताओं के अनुसार दूसरा चांस देना चाहिए हमें, हमारा भाग कैसे बनेगा इससे, ये भी हम कभी नहीं सोचते थे। जो सेवाएं दी हैं वही अच्छी हैं, उससे ही हमें कुछ आगे बढ़ना है, ऐसा हम संकल्प रखते थे। तो जीवन के भिन्न भिन्न फील्ड में सरलता का बहुत अभ्यास हुआ, भिन्न भिन्न फील्ड में। मेरे से बहुत सारी भाई बहने पूछते हैं कि तुम्हारे पास अगर लिखत में कुछ मैटर रखा हो, क्लासेस का, बाहर भाषण करने के लिए या और कुछ, तो हमें दे दो। और मैं, क्योंकि मेरे पास है नहीं, तो मैं यही कहता हूं कि मेरे पास तो ऐसा कुछ मैटर नहीं है। और मुझे कहते हैं कि तुम क्लास जो करते हो उसके लिए कुछ तो लिखते होगे, वही हमें दे दो। और मैं कहता हूं कि मैं अगर कुछ लिखता भी हूं तो क्लास कराने के बाद लिखता हूं कि आज क्या क्लास हुई है, वो फिर कभी काम पड़े तो उसके पॉइंट लिख लेता हूं। मुझे बहुत अच्छा अनुभव है इसका, मेरे मुख पर आ गया है, बहुतों के प्रश्नों का उत्तर है ये। और बहुत सारे लाइन में अपने मुख से ऐसी बोलता हूं जो मुझे नहीं पता होता, जो मैं नहीं सोचता हूं कभी। मुझे एक बार का अनुभव है और एक बार की फीलिंग्स हैं बहुत गहरी, वरदान है वो बाबा का, तो बाबा ने कभी हमसे किसी बात पर प्रसन्न होकर, जैसे भक्ति में है ना, भगवान प्रसन्न हो गया किसी से और दे दिया, बस दे दिया बहुत कुछ, कुछ चुपचाप दे दिया, कुछ कह के दे दिया। तो एक बार भगवान हमसे भी राजी हो गया था, वो हमें पता और उसे पता है बस, और वो नहीं पता वो, और उसने हमसे वायदा कर लिया था, है तो बिल्कुल प्राइवेट बात, जब तुम हाँ पहली बार मेरे मुख से निकल रही है, पता नहीं आप लोगों के वाइब्रेशंस काम कर रहे हैं या कैसे, मैं तो अपनी प्राइवेट बात प्राइवेट ही रखता हूँ, इतनी तो समाने की शक्ति है परंतु कभी कभी निकल जाती है। तो राजी होकर उसने मुझे ये वचन दे दिया था कि जब तुम बोलोगे तो तुम्हारी आवाज के साथ मेरी आवाज भी मिक्स होकर निकलेगी, इसलिए सच्ची बात है कि मैं तो किसी भी क्लास के लिए तैयारी नहीं करता हूं, और बाहर भी जब प्रोग्राम होते हैं, बाहर हम जाते हैं किसी कॉलेज में लेक्चर रख लिया, किसी और एसोसिएशन में, कहीं बैंक में कोई प्रोग्राम रख लिया, टॉपिक भी वो वहीं देते हैं, मैं भी उनसे वहीं पूछता हूं जब खड़े हो जाते हैं बोलने के लिए, और मैं वहीं बोलता हूं इस विश्वास के साथ कि मेरे साथ, मेरी आवाज के साथ ऊपर से बहुत सारा काम होगा, और वो सदा ही होता है। अच्छे अच्छे टॉपिक्स पर भी बोला है जिसकी हम कभी तैयारी नहीं करते हैं। तो सरलता हमारी शक्तियों को बहुत बढ़ा देती है। दूसरी बात निश्चिंत जीवन की है। एक बात और इसके संबंध में मुझे याद आ गई, तो मुझे 76 और 77 में एसिडिटी हो गई, हाइपर एसिडिटी हो गई, पेट दर्द रहने लगा, और पेट दर्द आप जानते हैं एसिडिटी बढ़ती है किसी भी टेंशन से। डॉक्टर मुझसे पूछते थे कि तुम्हें टेंशन होता है कोई, और हमारे साथ डॉक्टर काम करते थे बनारसी भाई, वो कहते थे नहीं नहीं कभी टेंशन नहीं होता, लेकिन टेंशन होता है, उसका पता हमें नहीं था कि ये भी टेंशन होता है क्या। हम टेंशन चिंता को ही समझते हैं, या कोई विशेष परेशानी जैसी हो गई हो, चिड़चिड़ापन गुस्सा आया हो, वो टेंशन। तो हमें संदेश मिलता था तब कि भाई कल 1000 लोग आएंगे पार्टी में, और ये सुनते ही पेट दर्द होता था। मुझे पता लग गया कि ये भी टेंशन है, अभी सोचा कुछ नहीं है, लेकिन सुना है केवल कि 1000 लोग कल पहुंचेंगे, आज इन सबका भोजन बनेगा, और इससे पेट में दर्द की फीलिंग्स बढ़ी। तो हमें समझ में आया कि टेंशन कुछ और भी होती है बिना सोचे भी, लेकिन एक सूक्ष्म रूप से सोचा है, एक भारीपन हुआ है जरा सा कि भाई छोटा सा किचन है हमारे पास, तो तब इतने हैंड्स और सेवादार नहीं होते थे, तो इतने लोग आएंगे, तो मुझे ये एसिडिटी एक वरदान बन गई 1-2 साल में, और मैंने अपने को इतना तैयार कर लिया कि कुछ भी हो, कुछ भी सुनना पड़े, कोई भी जिम्मेदारी दे दी जाए, संकल्प नहीं। और ये एक संकल्प हो गया इसके साथ कि ये यज्ञ चलता आ रहा है, 40 साल हो गए थे तब, और चलता रहेगा, हम ही इसमें काम करें इसलिए सफल होगा, ऐसा तो कुछ है नहीं, हम सब न हो तो भी जिसने यज्ञ रचा है वो इसको संपन्न कर देगा, तो हमें सोचने की क्या जरूरत है, जिसका यज्ञ है वो सोचे, उसको टेंशन होनी चाहिए, हम क्यों करें। तो वो एसिडिटी की प्रॉब्लम इस तरह हमें बहुत कुछ सिखा गई और वरदान बन गई, तो सदा ये विश्वास रहने लगा कि सब कार्य तो बाबा की शक्तियों के द्वारा हो रहा है और वही इसको संपन्न करेगा, हमें इसमें कुछ सोचने की कोई आवश्यकता नहीं। मैं इसी बीच में आप सभी को बाबा की वो बात याद दिला दूं जो मैं अपना कर्तव्य समझता हूं सबको याद दिलाना, और इसलिए मुझे बहुत याद रहने लगी है कि बाबा ने इस बार हम सबको बहुत अच्छी बात कही है कि मैं तुम्हारे साथ हूं, मुझे यूज करो, इसको गांठ बांध लेना है और ऐसा अनुभव करना है कि जैसे ही बाबा को याद करें बाबा हमारे सामने हैं और जैसे तैयार हैं कि बोलो बेटा क्या सेवा है, और हम जो कुछ उसे कहेंगे वो करेगा। इसके अनुभव हम सभी अपने जीवन में बढ़ाते चले। बहुत सुंदर अपॉर्चुनिटी हम सबको मिल गई है कि भगवान ने स्वयं हमारे सामने बैठकर कहा है मैं तुम्हारा हूं, अब तुम्हारे लिए हूं, केवल केवल तुम्हारे लिए मुझे यूज करो। ये शब्द भी आज से पहले कभी बाबा ने नहीं बोले थे, इस बार ही बोले हैं। इस पर सभी को चिंतन करना चाहिए और जहां जहां टेंशन हो बाबा को यूज कर लें। कुछ भविष्य के लिए टेंशन होती है, कुछ अपने जीवन के लिए कामना है हमारे पास उसमें टेंशन होती है। अब मैं आपके सामने एक और चीज रख देता हूं, मैं वो भी सभी को बार बार याद दिलाता हूं। यहां ज्ञान सरोवर में तो सभी को चार बातें मैं याद दिलाता रहता हूं बार बार, कि सभी उस चीज को बहुत ध्यान रखेंगे। एक, निर्दोष दृष्टि। एक बहुत सुंदर धारणा है हम सबके लिए, निर्दोष दृष्टि। हम एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाएं जब इस संसार में हमें कोई व्यक्ति दोषी नजर ना आए, सब निर्दोष हैं। बहुत अच्छी साक्षी भावना की ये दृष्टि है जो आत्मा को बहुत सुख देती है। दूसरा, निस्वार्थ भावना। स्वार्थ बहुत गहराई से अपनी जड़ें जमाया हुआ है हमारे अंदर। जैसे अहम ने जड़ें जमाई हैं, वैसे स्वार्थ ने जड़ें जमाई हैं। स्वार्थ का ही एक स्वरूप है कामनाएं, एक्सपेक्टेशंस, जो हमें टेंस करती हैं। स्वार्थ टेंस करता है, तनाव पैदा करता है स्वार्थ और कामनाएं। हर कर्म के पीछे हमारे मन में एक कामना छुपी रहती है और वो न पूर्ण होने से तनाव हो जाता है, क्रोध आ जाता है, चिड़चिड़ापन होता है, निराशा आती है, हीनता आ जाती है जीवन में, हम वो काम छोड़ देते हैं। तो मैंने इन दो बातों पर बहुत अच्छे अभ्यास किए हैं कई साल पहले। ये दो शब्द बाबा की मुरली में आए और व्यक्त मुरली में, निर्दोष दृष्टि और निस्वार्थ भावना। और तीसरी बात जो अभी अभी की है, डायमंड देखने का अभ्यास। और चौथी बात जो हम सबके लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, कि अपने इस परिवार को देखते हुए हम किसी के भी लिए अपनी भावनाओं को बिगाड़े नहीं। भावनाएं बिगड़ती हैं, किसी भी का भी कोई अवगुण देखकर, क्रोध देखकर, कोई गलत व्यवहार देखकर, चाहे हमसे गलत व्यवहार कर लिया हो तो भी हम क्योंकि ज्ञानी हैं, हम अपनी भावनाओं को न बिगाड़ें। भावनाएं बिगड़ने से जीवन में बहुत निराशा और ड्राइनेस आ जाती है, सूख जाता है जीवन। भावनाएं बहुत इंपॉर्टेंट चीज है मनुष्य की, और भावनाएं भी बिगड़ती हैं जब हमारी कामनाएं पूर्ण नहीं होती। कामना और भावना का बहुत गहरा खेल चलता रहता है जीवन में। जिसने हमारी कामना को पूर्ण कर दिया वो हमें अच्छे लगते हैं, प्यारे लगते हैं, और जिसने हमारी कामना को पूर्ण नहीं किया वो उनसे हमें घृणा हो जाती है। स्वार्थ पूरा हुआ हम संतुष्ट, स्वार्थ पूरा नहीं हुआ तो असंतुष्ट। तो हमें इस निस्वार्थ भावना पर, निष्काम भावना पर काम करना चाहिए। मैं अपने पास इस बात को बहुत अच्छी तरह पकड़ के रखता हूं कि कार्य व्यवहार में मेरी कोई अपनी कामना, कोई अपना स्वार्थ कहीं काम तो नहीं कर रहा है। जहां स्वार्थ खत्म होता है वहां बुद्धि में और जीवन में दिव्यता बहुत आ जाती है। नहीं तो स्वार्थ आत्मा को बड़ा कमजोर करता है, डिस्टर्बेंस पैदा करता है, क्रिएट कर देता है अनेक बार जीवन में। तो ये चार बातें जिस पर हमें बहुत अच्छा ध्यान रखना चाहिए तनाव मुक्त होने में, ये चारों बातें बहुत काम करेंगी। एक अर्थ इसका निश्चिंत जीवन है। भविष्य की चिंता होती है मनुष्य को, जो कर्म कर रहे हैं उसके परिणाम की चिंता होती है। कहीं भय मनुष्य को चिंतित करता है, भय भी तनाव पैदा करता है। और जो हम मेलों में अपनी समझाया करते हैं क्या होगा, वो डर भी हमें तनाव की ओर ले चलता है, चिंताएं पैदा करता है। निश्चिंत जीवन को हमें अपना लक्ष्य बनाना चाहिए कि हम ज्ञान की किन बातों का प्रयोग करें जिससे जीवन में निश्चिंतता रहे, तनाव से मुक्ति रहे। मैं जिस बात का ध्यान रखता हूं आजकल बिल्कुल निश्चिंत रहने के लिए, वो ये है कि कर्म जब हम कर रहे हैं तो कर्म से होने वाला, प्राप्त होने वाला परिणाम केवल कर्म पर आधारित नहीं है। हम एक कर्म में बिल्कुल एक्सपर्ट हो सकते हैं और हम ये चाहेंगे कि जब हम एक्सपर्ट हैं तो रिजल्ट 100% मिले, पूरा का पूरा मिले, क्योंकि हम एक्सपर्ट हैं उसमें, हमें हजारों बार का अनुभव है उस कर्म में। परंतु हमें जानना चाहिए कि कर्म का परिणाम केवल वर्तमान से ही प्रभावित नहीं है, कुछ पास्ट और कुछ फ्यूचर दोनों जुड़े हुए हैं। कंबाइन रूप से दोनों हमारे कर्म पर अपना प्रभाव डालते हैं। इसलिए अगर कभी परिणाम हमारी अपेक्षा के विरुद्ध चला गया तो हमें चिंतित होने की आवश्यकता नहीं। मेरे पास अपनी एक बात बहुत ही अच्छे रूप से सामने रहती है, और ऐसे ही दूसरों के बारे में चिंता, जो हमारा स्नेही है, प्रियजन है या लौकिक संबंधी हैं, बिल्कुल समीप के संबंधी हैं, उनके बारे में मनुष्य को चिंता होती है, टेंशन होता है। तो हमारे पास एक बहुत बहुत अच्छा कर्मों की गति का ज्ञान है, और हम ये देख सकते हैं कि अगर हम अपने किसी प्रियजन के लिए बहुत अच्छा पुरुषार्थ कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, इसके बाद भी उसकी अपनी कर्मों की गति ही उसको किसी दिशा में ले जाती है, सफलता की दिशा में, असफलता की दिशा में। तो सब कुछ हमारे हाथ में ही नहीं है, उसके अपने कर्म संपूर्ण रूप से जिम्मेदार हैं। मैं अभी 2-3 दिन पहले एक बात पर विचार कर रहा था कि बाबा ने कहा सब कुछ मुझे समर्पित कर दो और निश्चिंत रहो। तो क्या सब कुछ बाबा को समर्पित करने के बाद हमें संपूर्ण सफलता मिलेगी या जैसा हम चाहते हैं वैसा होगा? मैं सोच रहा था नहीं। और यही एक समर्पणता के पीछे रहस्य है कि सब कुछ समर्पण कर देने के बाद हार जीत, सफलता असफलता जो भी मिले वो भी समर्पण। तो मुझे ख्याल आया इसमें, महाभारत में बहुत अच्छे प्रसंग हैं इस संबंध में श्री कृष्ण के, कि श्री कृष्ण पांडवों के साथ है, द्रौपदी उसकी बहन है, द्रौपदी को उसने जहां तहां मदद किया, लेकिन जब द्रौपदी के पांचों पुत्र मारे गए तब द्रौपदी ने उससे पूछा तो होगा कि तुम तो थे, तुमने क्यों नहीं बचाया। जब अर्जुन का अभिमन्यु मारा गया तब अर्जुन ने भी ये प्रश्न तो पूछा होगा कि तुम तो थे, तुमने क्यों नहीं बचाया। भीम का मरा और उनके प्रियजन मर गए, श्री कृष्ण के भी अपने लोग मारे गए। तो यहां वो जहां हमें मदद करता है संपूर्ण रूप से, वहां हमारे कर्मों को जानते हुए कुछ बातों में साक्षी भी है। ये जो ज्ञान है हम सबको मिला है, इसको समझते हुए हमें बहुत सारी बातों में निश्चिंत रहना चाहिए। न सब कुछ हमारे हाथ में, न सब कुछ बाबा के हाथ में। मनुष्य अपने कर्मों के अनुसार बहुत सब कुछ प्राप्त कर रहा है। तो ये कुछ बातें हैं जो हमारे जीवन को सहज करती हैं, निश्चिंत करती हैं, लेकिन इन पर बहुत अच्छा चिंतन और इन पर बहुत अच्छे अभ्यास की जरूरत है। मैं अपने अनुभवों से देखता आया हूं यही बात, कुछ समय पहले, कुछ साल पहले सोचने के बाद भी चिंताएं खत्म नहीं होती थी, समय बीता चिंताएं खत्म होने लगी। अब कुछ ऐसे अनुभव होने लगे कि जीवन ज्यादा निश्चिंतता की ओर बढ़ने लगा। एक और चीज कि हमारा अपने साथियों के प्रति दृष्टिकोण कैसा है, जहां भी हम काम करते हैं या लौकिक परिवार आपको है। जो मनुष्य तनाव में ज्यादा रहते हैं उसके कारण हम बहुत अच्छी तरह देख सकते हैं। सबसे पहला कारण, सबसे इंपॉर्टेंट कारण जो मैंने देखा कि जब सवेरे उठते ही मनुष्य अपने मन में टेंशन को जन्म दे देता है तब उसका तनाव ज्यादा बढ़ता जाता है। सवेरे उठते ही कई रूप हैं टेंशन के, या तो कोई पिछली चिंता, कोई पिछली बात आ गई हो सामने, या सवेरे योग का अच्छा अनुभव न हुआ हो, वो भी एक रॉयल रूप है टेंशन का, जो आत्मा को खाली रखता है और जब व्यक्ति फील्ड में आता है तब उसको वो भरना चाहता है और वहां जब खींचातान होती है तो तनाव हो जाता है। इसलिए बाबा ने हम सभी के लिए बहुत अच्छे ये दो अवसर दिए हैं, सवेरे स्वयं को भरना और फिर ज्ञान के द्वारा, मुरली के द्वारा स्वयं को भरना। हमारे साथ ये बात घटती है कि हम मुरली सुन के बहुत अच्छे अनुभवों के साथ किचन में प्रवेश कर रहे हैं और वहां जाते ही एक दो तीन चार समस्याएं सामने। मैंने कई साल तक मधुबन में इस चीज का अनुभव किया कि जैसे लोग मेरा इंतजार कर रहे हैं कि मैं उधर से आऊं और उन्होंने दो चार चीजें निकाल के रखी हैं और आते ही मुझे वो सब सुना देनी। और मैंने पहला अपना नियम बना लिया था कि मुझे शांत भाव से सुन लेना, रिएक्शन नहीं, क्योंकि जब मनुष्य तुरंत रिएक्शन करता है तब उसकी शक्तियां नष्ट हो जाती हैं और समस्याएं हल होने की बजाय बढ़ जाती हैं। कई बार होता ये कि हमारे पास व्यक्ति आया है अपनी समस्या लेकर हल कराने और हो गया उल्टा, समस्या उसकी बढ़ गई और हमारी बढ़ गई, तो डबल टेंशन पैदा हो जाता है। तो एक बहुत अच्छा अभ्यास है, आप में से जो भी करना चाहें कर सकते हैं, चाहेंगे तो आप सभी सफलता अपनी अपनी देख लें कि कुछ दिन आप एक हफ्ता के लिए एक्सपेरिमेंट के तौर पर कर लें कि हमें दूसरों की किसी बात पर रिएक्शन नहीं करना है। देखो होता है रिएक्शन, अर्थात कुछ उत्तर नहीं देना, उल्टा प्रतिक्रिया नहीं करनी है। कोई हमसे कुछ उल्टा बोल रहा, हम जरा कुछ रिएक्शन न करें, देखें उल्टा प्रभाव होता है सीधा होता है, कहीं उल्टा भी हो जाएगा लोग कुछ बुरा बोलेंगे, लेकिन इसका एक्सपेरिमेंट करके देखें कि इसका संबंध हमारी कितनी आंतरिक शक्तियों से है। वैसे तो बहुत शक्ति की आवश्यकता है कि हमारी कोई ग्लानी कर रहा हो हमारे मुख पर ही कि तुम ऐसे हो, तुम ऐसे हो, तुमने ये किया वो किया, एक साल पहले ये किया था, दो साल पहले ये किया था, दस साल पहले ये किया था। जब व्यक्ति कहानी सुनाते हैं तो सारी खोल देते हैं आगे से पीछे की सारी टीवी कि तुमने वहां ये किया, सब कुछ निकाल देते हैं। इसके बाद भी अगर हम रिएक्शन न करें तो क्या होता है? परंतु सोचना ये है कि ये हम कहां तक कर सकते हैं। तो इस तरह हम टेंशन को स्वयं के पॉजिटिव थिंकिंग के द्वारा कम करने का अभ्यास करें। मैं तो ये सोच के रखता हूं अपने पास कि हम या हमारा जीवन या हमारा विवेक दूसरों की टेंशन को, समस्या को खत्म करने के लिए है, बढ़ाने के लिए नहीं। कोई व्यक्ति हमारे पास आया तो वो इसी लक्ष्य से आया है कि हमारी समस्या का समाधान होगा। तो अगर हम ये याद रखते हैं तो हमारी भावनाएं सहयोगी भी रहती हैं और हम टेंशन को कम कम करते जाते हैं। हमारे पास एक बड़े व्यक्ति आते हैं कभी कभी यहाँ मधुबन में, जेके जो ये है जिनकी फैक्ट्रियां हैं उनके फैक्ट्रियों के प्रेसिडेंट हैं वो, तो वो यहाँ एक ही चीज के लिए आया करते हैं कि उनको बहुत साल हो गए नींद नहीं आती है, तो वे यहाँ आके अच्छी नींद आ जाए इसलिए वो यहाँ आते हैं। तो जब वो पहली पहली बार आए अब से पांच साल पहले, तो मुझे उनको क्लास कराने के लिए दिया गया, तो क्लास चाहे हम कुछ भी कराएं प्रश्न उनका एक ही होता था कि मुझे नींद कैसे आए ये बताओ, योग भी ऐसा कराओ कि मुझे नींद आ जाए, भले ही योग में ही आए लेकिन नींद आ जाए। तो मैंने उनसे बहुत सारी चीजें पूछी और तब मुझे बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इकट्ठी हो गई, ज्ञान हो गया बहुत ज्यादा। तो मैंने उनसे पूछा कि जब आप फैक्ट्रियों में जाते हो तो कैसा इफेक्ट रहता है आपका, प्रभाव कैसा है वहां। मैं जरा प्रश्न ऐसे ढंग से पूछता था कि उन्हें ये पता न लगे कि मैं क्यों पूछ रहा हूं। तो उसने कहा कि भाई जनरल मैनेजर एकदम बस स्ट्रिक्ट होके खड़े हो जाते हैं और मेरे जाते ही भय फैल जाता है फैक्ट्री में कि भाई साहब आ गए, अब पता नहीं क्या करेंगे। तो हमारी समझ में आ गया कि जो व्यक्ति कहीं माहौल में भय पैदा करता हो उसको रिवर्स में उसका जो फल मिलेगा टेंशन मिलेगी। जो व्यक्ति भी भय पैदा करे दूसरों के लिए उसका इनाम है टेंशन। ये एक बड़ी सूक्ष्म गति है। कोई भी ऑफिसर, कोई डायरेक्टर या मैनेजर, उसके जाते ही सब कार्यकर्ता डर जाएं तो उनकी कार्य क्षमता भी कम होने लगेगी। भय से जो काम किया जाता है तो बिल्कुल ठीक होता ही नहीं कहीं, और उनको टेंशन होगी। तो मैंने समझ लिया कि इनकी टेंशन का एक बहुत बड़ा कारण यह है। मैंने कहा कि अगर कोई गलती हो जाती है किसी मैनेजर से, किसी ऑफिसर से, तो आप क्या करते हो? कहा इस बारे में मैं बहुत स्ट्रिक्ट हूं, वार्निंग भी देता हूं लेकिन सस्पेंड कर देता हूं। दूसरा कारण उसकी टेंशन का, क्योंकि उसने एक व्यक्ति के मन में नहीं उसके सारे परिवार वालों के लिए टेंशन पैदा कर दी, और उसके रिटर्न में भी उसको टेंशन मिलना ही चाहिए। कर्मों की गति तो यही है, डबल मिलेगा। जो व्यक्ति दूसरों को खुशी देता है उसको डबल खुशी, सुख देता है डबल होकर सुख, टेंशन देता है तो डबल होकर टेंशन। ऐसी बहुत चीजें उनसे पता चला। परिणाम क्या हुआ? अब उसकी जो युगल थी वो तो जैसे देवी, बस उसके आधार पर वो जी रहा है। वो उसको बहुत हल्का करती है। उसका एक लड़का वो भी बहुत अच्छा हो, उसको टेंशन से सदा ही मुक्त रखने की कोशिश करता है। घर में आता है तो बिल्कुल ऐसे रखते हैं, उससे बात भी ऐसी करते हैं कि कोई टेंशन उसको ना हो, और वो सारा दिन ठीक ठाक रहता है। लेकिन जैसे ही बिस्तर पे जाता है तो फ्रेश हो जाता है, अर्थात नींद नहीं आती उसके बाद। ये भी फ्रेशनेस है एक, क्योंकि नर्व सिस्टम में टेंशन होती है तो वो अलर्ट रहती है, चुस्त, और उससे मनुष्य को नींद नहीं आती है। तो ये कुछ कारण हैं। एक व्यक्ति क्रोध करता हो, उसके पास जाते हुए सब डरते हो, भय हो, तो उसको टेंशन होगा ही। टेंशन और क्रोध दोनों बिल्कुल जुड़ी हुई चीजें हैं। अहम सूक्ष्म रूप से टेंस करता है मनुष्य को, और क्रोध बिल्कुल स्थूल रूप से तनाव पैदा करता है, और चिड़चिड़ापन इसी तरह बीमारी में चिड़चिड़ापन हो जाता है, या किसी और कारण से मनुष्य के अंदर चिड़चिड़ापन हो गया हो वो भी तनाव पैदा करता है। और विस्तार तो इनका आप सब जानते हैं। क्रोध को भी हमें धीरे धीरे कम करना ही है। बाबा ने क्रोध मुक्त होने का नारा भी दिया है और बहुतों ने इसके लिए पुरस्कार किया है। हम लोग जब बाहर गए इसी बीच में, हमने ये बात सुनाई पब्लिक में, तो हमारे यहाँ लाखों भाई बहनों ने, कई लाखों ने क्रोध से मुक्त होने के लिए मेहनत की है, अभ्यास किए हैं, तो लोगों के लिए एक चमत्कार था। जो लोग ये कहते हैं ना कि भाई महेश योगी ये कर रहा, विपश्यना वाले ये कर रहे हैं, और फलाना जो है साईं बाबा इतना सुख दे रहा है, फलाने रेकी वाले ये कर रहे हैं, देखो लोगों को ठीक है, तुम क्या कर रहे हो? तुम तो कुछ भी नहीं कर रहे हो, बस योग सिखा दिया ये, इससे क्या होता है? लेकिन कितना बड़ा एक आंदोलन है कि लाखों लोग क्रोध को छोड़ने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। संसार के लिए तो अद्भुत चीज है, बिल्कुल यूनिक, जो कहीं हुई नहीं। तो ऐसी बात जो संसार के लिए भी आदर्श है, हम सब अब उससे मुक्त हो रहे हैं। इस तरह आने वाला समय इस सारे संसार में ये दो चीज पैदा करेगा बहुत ज्यादा, भय और टेंशन। और मनुष्य को सबसे ज्यादा दुख देगा उसके अंदर छुपा हुआ मोह, चाहे वो मनुष्यों से हो चाहे वस्तुओं से हो। ये तीन बातें हमें सदा याद रखनी चाहिए। विनाश काल में दुखों का कारण मोह, और सारे संसार में वातावरण में फैल जाएगा भय और टेंशन। टेंशन ये कि कब क्या हो जाए कुछ पता नहीं, भय भी यही कब मृत्यु हो जाए, कब क्या होने लगे हमारे साथ कुछ पता नहीं। और यही दो चीजें धर्मराजपुरी बनाएंगी संसार को विनाश काल में, जब सभी आत्माएं अपने अपने पापों की सजा यहीं पर प्राप्त कर लेंगी। हम सभी अपने वाइब्रेशंस के द्वारा मनुष्यों को निर्भय बनाएंगे, तनाव मुक्त बनाएंगे। एक एक को ज्ञान तो नहीं दिया जाएगा, परंतु ये संभव है कि रेडियो पर बाबा की मुरली चला करें, टेलीविजन पर रोज ही बहुत अच्छे अच्छे सवेरे सवेरे उठते ही प्रोग्राम आया करें और लोगों को कुछ सीखने को मिला करें, क्योंकि सब बाबा के बच्चे हैं और वो विज्ञान के साधनों का प्रयोग आत्माओं को विनाश काल में भी बहुत कुछ सुख देने के लिए, मुक्त रखने के लिए करेगा। बाबा ने ये कहा है पहले ही, विज्ञान की सभी इन्वेंशन स्थापना के कार्य में काम आएंगी। तो हम सभी को बढ़ते हुए भय और तनाव के माहौल में ऐसे वाइब्रेशंस देने होंगे कि वाइब्रेशंस ही लोगों को तनाव से मुक्त करें। मैं इस बार आपने सुना होगा, मैं तो सुनाता रहा हूं ये बात, तो हमारे यहाँ कॉन्फ्रेंस जो हुई मई जून में, इसमें लोगों ने ये बहुत अनुभव सुनाए कि जब यहाँ आए थे तनाव से भरे थे, दोपहर में आए तनाव से भरे हुए और शाम तक ऐसा लगा कि किसी ने तनाव खींच लिया हो। बहुत अच्छे अच्छे अनुभव अच्छे पढ़े लिखे लोगों के, जजेज के, अच्छे अच्छे राइटर्स के, कई वकीलों के सुनने को आए। हमारे वहां आते रहते थे किचन में, तो मैं पूछा करता था कैसा लगता है यहाँ आपको, तो ये उत्तर बहुतों का था कि बोझ से दबे हुए आए थे और जैसे किसी ने हर लिया हो बोझ। ये वाइब्रेशंस का इफेक्ट इस बार एक चमत्कारिक रूप से अनुभव कराने वाला था। तो ये हम सबको सिखाता है कि हम अपने वाइब्रेशंस ऐसे बनाएं जो लोगों का टेंशन खींच ले। हम मुझे बाबा की ये बात पहले बिल्कुल समझ में नहीं आती थी जब सुनी थी कि अभी तो तुम अपने विकर्म विनाश करने में लगे हुए हो, वो भी नहीं हो पा रहे, लेकिन अंत में तुम्हें अनेक आत्माओं के पाप नष्ट करने होंगे। हम सोचते थे ये अनेक आत्माओं के पाप नष्ट करने वाला योग कौन सा होगा, अभी तो अपने ही नहीं हो रहे और तुम्हें अंत में अनेक आत्माओं को विघ्नों से मुक्त करना होगा। तो आप कल्पना करो, कोई गृह युद्ध हो रहा है, हजारों लोग मारे गए, घायल हैं, पड़ी हैं आत्माएं शरीरों में, लोगों ने सोच लिया मर गए, या कौन सोचेगा और कौन देखने जाएगा किसी को, आत्मा शरीर में उलझी हुई है, पापों की फीलिंग कर रही है, अंतिम समय में पाप उसके सामने है। इधर से योगी आत्माओं के वाइब्रेशंस जाएंगे और आत्माओं के पाप नष्ट होंगे, आत्माएं शरीर छोड़ के मुक्त होंगी। ये कार्य अंत में करना है। तो ऐसे पावरफुल वाइब्रेशंस हमें अभी से बनाने हैं। विघ्नों में दबी रहेंगी आत्माएं, चारों ओर विघ्न होंगे, सब कुछ नष्ट होगा, तो वो विघ्न के रूप में लोगों के सामने आएगा। किसी को खाने को भी नहीं मिलेगा, दवाइयां नहीं मिलेगी, पीने को पानी नहीं होगा। देख सकते हैं आप जब बाढ़ आती है शहरों में, रोहतक में पिछले साल पानी भरा, मैं वहां गया उन दिनों, सारे में पानी भरा हुआ शहर में, तो बिजली तो काट दी गई सारी, क्योंकि अगर करंट पानी में चला गया तो सभी मर जाएंगे। सारे शहर में पानी भरा हुआ है लेकिन पीने के लिए पानी तो घरों में है नहीं, वो तो बिजली से आएगा ना, नीचे से सप्लाई लाइन कटी हुई है। आप देखो कितना बड़ा आश्चर्य, चारों ओर पानी, जिधर देखो पानी पानी, और पीने को नहीं है। आटा जिनके पास जितना था वो खत्म हो गया, अब चक्कियां तो चली नहीं रही, आटा ही नहीं है, तो दूसरे शहरों में लोग जा रहे हैं आटा पिसवाने के लिए। तो विनाश के भिन्न भिन्न जो कारण बनेंगे उससे विघ्न बढ़ेंगे और तब हमारे वाइब्रेशंस आत्माओं को रिलीफ देंगे, शांत बना देंगे, कुछ राह दिखाएंगे। तो हमें ये सोचना है कि अब क्या करें। डायमंड जुबली वर्ष के 5 मास रह गए हैं, बीतते जा रहे, ऐसे बीत जाएंगे 5 मास, तो साल बीतते आ रहे हैं हम सबके सामने। और बाबा ने बहुत अच्छी अच्छी प्रेरणाएं दी हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें कही हैं। कम से कम हम सभी को 31 दिसंबर की मुरली बार बार पढ़नी चाहिए, और उसमें 12 पॉइंट्स हैं बहुत अच्छी सॉलिड, जो कुछ हमें करना है उसकी प्रेरणा देने वाली, उनको करने का कुछ प्लान बनाना चाहिए। और एक बहुत अच्छा प्लान ये है, जो भी समय के अनुसार, समय की डिमांड के अनुसार पुरुषार्थ करना चाहते हैं बड़े स्ट्रिक्टली, वो 3-3 पॉइंट में एक एक हफ्ते का प्लान बनाएं। एक हफ्ता हमें क्या करना है, ये करना है, हम क्या चाहते हैं वो नहीं, हम एक हफ्ता इन 3 बातों पर अभ्यास करेंगे। वो इन मुरलियों में हैं बहुत सारी, उसका उनका अध्ययन करके आप वो सब बातें निकाल लें जो करने के लिए कहा गया है। मैं ये बात इसलिए आपको कह रहा हूं कि पुरुषार्थ में सफलता उसी आत्मा को मिलती है, इटर्नल लो कहें हम इसे, किसी भी कार्य में सफलता उसी व्यक्ति को मिलती है जो प्लान स्वयं बनाते हैं। जो दूसरों के बनाए प्लान को फॉलो करते हैं ठीक है, वो भी अच्छा हो जाता है, परंतु सदा सफलता वाला नहीं। इसलिए जो कुछ हम करना चाहते हैं वो हमें जानना चाहिए कि हम ये करना चाहते हैं, और अपनी क्षमताओं के अनुसार, अपनी स्थिति परिस्थिति और कामकाज के अनुसार हम उसको एक प्लान बना दें, सेट कर दें जीवन में कि इन 3 बातों का अभ्यास हम इस हफ्ता करेंगे, रिजल्ट देख के अगले हफ्ता दूसरा प्लान बना दें, या चाहे तो उसको ही रिपीट कर लें, उसमें कुछ संशोधन कर लें। तो एक बहुत सहज तरीका हो सकता है सदा ही अपने को अच्छे पुरुषार्थ और अच्छे अनुभव में रखने का। तो लक्ष्य हम सब का यही हो कि ज्ञान और योग के द्वारा कोई भी परिस्थिति जो अचानक भी हमारे सामने आ गई हो, हमारी खुशी को न छीन ले और हमसे हमारे ज्ञान को न भुला दे। माया का एक बहुत बड़ा स्वरूप, एक बहुत बड़ा अटैक कहें यही होता है कि ज्ञान की कुछ बहुत अच्छी अच्छी बातें हमसे भूल जाती हैं। मैं इसके लिए हमेशा ये रखा है अपने पास, सदा ही कम से कम 5 बातें बहुत अच्छी जो मुझे पुरुषार्थ में दिखाई देती हैं अपने, वो मैं नोट करके रखता हूँ, उनको पढ़ता भी रहता हूँ ताकि कोई बात मुझे वो बातें न भुला दें 5। तो उनके आधार पे ज्ञान इमर्ज रहता है और स्थिति को बैलेंस में रखने के लिए वो 5 बातें बहुत ही काम की हो जाती हैं। तो ऐसा ही अपना प्लान हर एक को स्वयं बनाना चाहिए। समय का तो चैलेंज है, और बाबा की मुरलियां सुनकर और कुछ इस साल होने वाले अनुभवों से हम ये समझ सकते हैं कि अगला साल क्या क्या सीन हमारे सामने लाएगा। आपको भी दिखाई देता है कुछ, दिखता है, सेवाओं से भी तो पता चलता है, अपनी स्थितियों से पता चलता है, अगला साल, उससे अगला साल, उससे अगला, थोड़ा सा ही तो रह गया बस। लंबी यात्राएं तो पूरी होगी 60 साल की, जो संगम युग का विशेष पीरियड था पढ़ाई का, बाबा ने सदा यही कहा पढ़ाई के 50-60 साल हैं, वो सब तो पूरा हो गया, जो कुछ उसे पढ़ाना था। हमें ऐसा लगता है कि कुछ छोड़ा तो नहीं है, कुछ बात रह गई हो तो अब पूरी हो जाएगी 4 टर्न में, और उसके आगे उम्मीद है कि शायद 2 ही टर्न रह जाएं। बाबा ने ये कहा हुआ कि दृष्टि ही मिलेगी केवल, और वही अव्यक्त पार्ट की समाप्ति के चिन्ह होंगे, संकेत होगा कि अब ये खेल समाप्त होने को है। तो 60 साल पूरा होने के बाद तो इस कार्य में एक चमत्कारिक मोड़ आना ही है, हमें भी उस अनुसार ही अपनी स्थिति में चमत्कारिक मोड़ देना चाहिए। अंत में मैं आपको ये एक बात याद दिलाऊं, अभी हमारे यहाँ जो इंजीनियर और साइंटिस्ट की ऐसी ट्रेनिंग थी, तो तो उसमें एक बात पे चर्चा हो रही थी और बहुत अच्छी है हम सब के लिए। उन्होंने एक ABCD का फॉर्मूला बनाया, या पहले से भी चला आ रहा होगा, उसको जरा रिवाइज किया, ABCD। और वो ये था, याद रखने में जरा मजा आता है इसको, इसलिए अच्छा है ये कि देखो दुनिया में जिस व्यक्ति का जो मेन बिजनेस होता है, मेन काम, उस पे वो ज्यादा अटेंशन देता है, उस पे वो ज्यादा समय देता है, एनर्जी लगाता है, और बाकी चीजों के बारे में वो ABC, ए अर्थात अवॉइड कुछ चीजों को, ये अपना बिजनेस नहीं है, अवॉइड कर देता है। बी बाईपास, हमारा ये काम नहीं, हम तो इसमें बिजी है, तुम कर लो। सी कैंसिल, कुछ चीजों को कैंसिल, क्योंकि वो जो उसका मेन बिजनेस है उससे जुड़ा हुआ नहीं है वो। हर मनुष्य के जीवन में ऐसी बहुत सारी बातें हैं। और डू करो, तो जो मेन बिजनेस है उसमें वो डू करो, और बाकी सब में किसी में अवॉइड, किसी को बाईपास, किसी को कैंसिल। तो हमें भी सोचना है कि हमारा मेन बिजनेस क्या है, सबको सोच लेना अच्छी तरह से कि इस समय समय की जो डिमांड है उस अनुसार हमारा मेन काम क्या है, तो हमारी संपूर्ण एनर्जी उस पे ही चलनी चाहिए। बाकी जो काम है कोई अवॉइड करें, कोई बाईपास कर दें, दूसरों को दे दें, और कोई कैंसिल कर दें। अंत में बस मैं आपको फिर याद दिला दूं, मैंने अपने पास एक संकल्प रखा हुआ है, बहुतों के पास होगा वो संकल्प। मैं अपने को ऐसा कहता हूं कि भगवान का और हमारा साथ अगले 5 साल के लिए है मेरे लिए, ज्यादा भी हो सकता है, जब तक जिएंगे तब तक तो रहेगा ही, परंतु मैंने ऐसा अपने को फिक्स करके समझाया हुआ है कि मेरा और भगवान का साथ अगले 5 साल के लिए है। और 5 साल के लिए उसने कह दिया है मुझे, 5 साल तेरे पास हूं, जो चाहे यूज करो मेरा। तब ये मुझे सोचना है कि इतनी सुंदर मिली हुई अपॉर्चुनिटी का, ऐसे सुंदर मिले हुए भाग्य का मैं क्या उपयोग करता हूं। अगर मैं नहीं करता तो ये मेरी अपनी गलती होगी, वो तो कहेगा मैं तो था तुम्हारे पास, अब तुमने नहीं कुछ किया तो मैं क्या करूं। जो भी हो, जो भी बनना चाहे वो बना देगा। अब प्राइम मिनिस्टर बनना तो लक्ष्य नहीं है ना, अब तो कुछ और लक्ष्य है। हाँ, 5 साल के लिए पार्लियामेंट बनती है, प्राइम मिनिस्टर बन, खैर आजकल तो क्या भरोसा 5 साल के लिए प्राइम मिनिस्टर रहेगा या 5 दिन के लिए। एक भाई ने स्वप्न देखा था, अभिज्ञानी ने साक्षात्कार किया सेमी ट्रांस में, कि भाई मुझे दिखाई देता है कि ये देवी घोड़ा सरकार 10 मास की है बस, हलचल हो रही है इसमें, कहा बार बार दिख रहा है। मैंने कहा चलो अब दिख रहा है तो हम भी देख लेंगे, 10 मास तो अब आए। तो ऐसा है, इस तरह हम सभी को समय की मांग के अनुसार अपने मेन बिजनेस को समझ लेना चाहिए और उस पे ही कंसंट्रेट करना चाहिए। विस्तार तो इतना है कि मनुष्य जितना चाहे अपना विस्तार कर ले और उसमें उलझ जाए, और समझदारी यह है कि समय के अनुसार अपने मेन सब्जेक्ट पे फोकस करें और बाकी सब चीजों को ABC कर दें, तो सफलता हो जाएगी। ओम शांति। मैं तो ये कहूंगा, मुझे बहुत खुशी है आप सबकी इस ट्रेनिंग से, मीटिंग से। मैं तो पहले से ही सबसे ज्यादा जो हमारे साथी हैं उनको एनकरेज करता हूं कि सबसे अच्छी सेवा एजुकेशन फील्ड की है, और यही एक ऐसा फील्ड है जो संसार को बदल सकता है, और भी हैं परंतु ये सबसे अच्छा है, इसलिए इस पे पूरा ध्यान दिया जाना चाहिए। और अब आप सब लोग इतने तैयार हो गए तो एक एक चंद्रमा चमकेगा अंधकार में और सारे संसार को रोशन करेगा। ओम शांति।